ओम शांति।
तो मुझे विषय दिया गया है बिहेवियरल मैनेजमेंट। जैसे इस रिट्रीट कम सेमिनार का मेन अम्ब्रेला थीम है एटीट्यूडनल चेंज फॉर होलिस्टिक चेंज। अगर हम संपूर्ण परिवर्तन लाना चाहते हैं सारे विश्व का, तो उसके लिए पहले स्वयं का परिवर्तन लाना जरूरी है। जिस प्रकार, जिसलिए महात्मा गांधी के वे शब्द याद आते हैं, बड़े फेमस शब्द है महात्मा गांधी के, टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द वर्ल्ड वी हैव टू ब्रिंग द चेंजेस इन आवर सेल्व्स फर्स्ट। द चेंजेस वी वॉन्ट आउटसाइड हैव टू कम फर्स्ट कम फ्रॉम इनसाइड। अर्थात जो कुछ हम परिवर्तन बाहर से चाहते हैं, पहले वह परिवर्तन हमारे अंदर से आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम विश्व शांति चाहते हैं, तो विश्व शांति का आधार क्या है? विश्व शांति का आधार क्या है? विश्व शांति का आधार है पहले व्यक्तिगत शांति, क्योंकि कई सोचते हैं कि विश्व शांति आने के बाद व्यक्तिगत शांति आएगी। अब प्रश्न है, विश्व शांति आने के बाद व्यक्तिगत शांति आएगी या व्यक्तिगत शांति से विश्व शांति आएगी? क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि दुनिया में शांति जब आएगी ना, तब ही हमको शांति मिल सकेगी। लेकिन दुनिया की शांति का आधार ही तो व्यक्तिगत शांति है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है या सागर से बूंद बनता है, ये तो नहीं कहेंगे सागर बन जाए फिर बूंद बूंद बने, लेकिन बूंद बूंद ही सागर बनाता है। अब ये दृष्टिकोण हम इस सेमिनार कम रिट्रीट में अपना रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम यही देखते हैं दुनिया के अंदर। हम दूसरों से परिवर्तन तो अपेक्षा उनकी करते हैं, ये बदले, पर ये कभी नहीं हम अपनी तरफ सोचते कि मैं बदलूं। बहुत कम होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो सदा यही पहले सोचते होंगे कि मैं बदलूं। हमने देखे, समझो हमारे पास एक पॉलिटिशियन आया था, ऐसे बातचीत चल रही थी कि पॉलिटिक्स में आजकल कितना भ्रष्टाचार आ गया है, बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही थी। अब तुरंत उसका जवाब क्या था कि बहन जी, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो फिर जनता हमको चुनती क्यों है? तो पहले जनता बदले ना, जनता बदले और ठीक पॉलिटिशियन को चुने तो पॉलिटिक्स अच्छी हो जाएगी। इसलिए दोषी कौन? दोषी जनता। तो जनता जब पूरी बदल जाए और फिर वो सही पॉलिटिशियन को ढूंढे और फिर उनको वोट दे, अब ऐसा संभव है क्या? वो कैसे पता चले? जी अंतर वही ना, इस यानी वो पॉलिटिशियन क्या सोचता है कि जनता पहले बदले और फिर
तो बदल चुकी
है। ये तो हम और आप समझ रहे हैं ना, लेकिन मैं उसकी बात सुना रही हूँ जिस पॉलिटिशियन ने हमको ये बात कही। इसीलिए अब आप विद्यार्थियों से बात कीजिए। देखिए मैं आपको हर क्षेत्र में पूछ बताऊं, विद्यार्थियों से हमारी बात होती है तो विद्यार्थी भी यही कहेंगे हमारे टीचर बदले, टीचर ठीक नहीं पढ़ाते, इंटरेस्ट नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब टीचर कहेंगे विद्यार्थी ऐसे है, पहले घर में वो सुधरे, माँ बाप उनको नहीं सुधारते। अब टीचर माँ बाप कहेंगे कि आधा समय तो दिन का टीचर के पास रहते हैं, इसलिए उनको टीचर सुधारे, हम माँ बाप क्या सुधारेंगे, बाकी स्कूल क्यों भेजा, समझो। आखिर बदले कौन, सुधरे कौन पहले? अब आप मैनेजर्स कहेंगे कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है वो ठीक हो, सबॉर्डिनेट्स कहे कि हमारा बॉस ठीक हो, आप कहेंगे हमारा जो ऊपर वाला हो पहले वो ठीक हो। तो आखिर ठीक पहले होगा कौन? कि होगा ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हम जब हम बिहेवियरल मैनेजमेंट बताते हैं तो सब कुछ हम जानते हैं कि इसका मूल आधार है हमारी पर्सनल थिंकिंग। तो पर्सनल थिंकिंग हम किसको कहते हैं? सबसे पहली बात की जो आप यहां देख रहे हैं, अगर हम इस प्रिंसिपल को कभी ना भूलें कि माय रेस्पॉन्स टू पीपल एंड सिचुएशंस अराउंड मी बिगिंस विथ मी माय थॉट्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, ऑल माय सिचुएशंस आर बैड, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो उसकी बजाय अगर मैं परिवर्तन चाहती हूं तो सबसे पहले मैं इन सिचुएशंस और पीपल का परिवर्तन के लिए माय रेस्पॉन्स टू देम विल बी विथ मी माय थॉट्स। और द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन माय थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्योंकि मेरे थॉट्स ही निमित्त हैं परिवर्तन के लिए, तो मेरे थॉट्स पर किसका इन्फ्लुएंस है? अभी अगर मैं थॉट्स को चेंज करूं तो मेरे थॉट्स पर किसका इन्फ्लुएंस है? नहीं, हाँ, नो नो, बिफोर अदर्स व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग माय थॉट्स? माय सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड माय वैल्यूज, दे आर इन्फ्लुएंसिंग माय थॉट्स। क्योंकि मैं अंदर में ये समझ रही हूं मैं सच्ची हूं, मैं ठीक हूं, अब वो भी यही समझ रहा है मैं ठीक हूं, दोनों की अपनी वैल्यूज है। तो वैल्यूज और आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी, ये कारण है, हम ये प्रभाव डालते हैं हमारे थॉट्स पर। तो मेरी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है और मेरे वास्तविक वैल्यूज क्या है, अब उसको भी समझने की जरूरत है। कई हैं जो अपने वैल्यूज में बहुत पक्के होते हैं, ये मुझे झूठ नहीं बोलना है, ये उनकी एक वैल्यू है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, अब कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है, प्रसंग, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ भी नहीं देखते हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, पर ये चलता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को जब उनका बायोप्सी किया और पता चला कि इसको कैंसर है, पता चल गया, बट शुड ही स्पीक डायरेक्टली, आपको कैंसर हो गया है क्या होगा, समझो, विल शुड ही स्पीक? व्यक्ति को देखे किसकी परिस्थिति क्या है, विल यू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ? अब वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया है, डॉक्टर साहब कहते कुछ नहीं है, आप चिंता नहीं करो, ख्याल नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, फिर उसकी लेवलिंग ठीक करेगा, परिवार वालों को बताएगा लेकिन उसको नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति कितनी है, वो कितना इस बात को झेल सकेगा पता नहीं है। तो जब उसको तैयार करेगा, तैयार करने के बाद व्हेन इज रेडी टू एक्सेप्ट, तब उसको धीरे धीरे कहेगा। इसमें छोटा चुटकुला याद आता है, चुटकुला याद आता है कि एक व्यक्ति था। अब कई बार है ना, दुख की घटना तो हमें बहुत हार्ट अटैक दिला सकती है, समटाइम्स एक खुशी की बात भी हमें हार्ट अटैक दिला सकती है, पता है नहीं? हम एक मिसाल सुन रहे थे कि कैसे खुशी की बात भी हार्ट अटैक दिलाती है, पता नहीं आपको प्रेम हसन ने ये कहानी सुनाई, बताई बताई ना आपको उस दिन, ये बताई थी, तो ये है कि नहीं? ये छोटे से एग्जांपल्स है। अब सच्चाई भी हम कैसे बताएं? आज एक पेशेंट हो, उसका ऑपरेशन तो करना है, लेकिन क्या हम सीधा ऑपरेशन कर देंगे उसका? क्या करेंगे? मेंटली सेट से पहले भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेंगे, उसका डायबिटीज को मिनिमाइज करेंगे, और खून अगर कम हो तो उसको फिजिकली भी, ये सब उनको दे करके, उनको नॉर्मल करके, मेंटली प्रिपेयर करके, उनसे साइन करवा करके, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है, समझो कुछ भी, ही शुड बी रेडी। तो मेंटली प्रिपेरेशन भी बहुत जरूरी है बिफोर वी रियली एक्सेप्ट एनीथिंग। तो हमारे वैल्यूज, तो झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या हर परिस्थिति में झूठ बोलना पाप है? अगर डॉक्टर उस पेशेंट को कहता, नहीं तुमको कुछ नहीं है, तुम चिंता नहीं करो, और मालूम है कि है, तो ये झूठ तो नहीं, ये तो झूठ बोला ना। परंतु अगर वो सच बोलता, इट वुड हैव बीन वर्स फॉर हिम। अभी जैसे देखो, छोटा बच्चा है, बच्चे कितनी छोटी छोटी बातें पूछते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी पूछते हैं। अब माँ बाप सब बता देंगे क्या बच्चों को? बताना भी नहीं चाहिए, कई ऐसी बातें हैं। इसीलिए उसको हम झूठ सच की क्या, किस कसौटी पर हम मापेंगे? या सो मेनी फैक्टर्स। तो वैल्यूज को भी हम किस रूप से लेते हैं, कई जैसे कहा जाता, सच भले बताओ लेकिन प्यार से बताओ। कई कहेंगे नहीं, ट्रूथ इज बिटर, सच बताओ तो मिर्ची लगती है, हैं? ऐसे कई कहते। परंतु क्यों मिर्ची लगेगी? आप भले बताओ पर प्यार से बताओ ना। आजकल शुगर कोटेड करके देते ना कड़वी दवाई, वाई कांट वी गिव इट, वी हैव, वी कैन। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर वो धीरज नहीं है, सच्चाई है। सो ट्रूथ इज अ वेरी गुड वैल्यू इन अस, बट अलोंग विद ट्रूथ पेशेंस इज ऑल्सो अ वैल्यू नो। तो क्या करते हैं, हम ट्रूथ को तो इम्पोर्टेंस देते हैं और पेशेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अभी ना, विच शुड कम फर्स्ट, ट्रूथ और पेशेंस? फल तो मिला, लेकिन उस फल को कच्चा ही खा लेते हैं, तो वही फल हमको सुख देने की बजाय दुख देगा ना, पेट में बदहजमी पैदा करेगा। वी हैव टू वेट टिल इट राइप्स अप, राइपेंस। अब ये वैल्यूज और फिर सेल्फ आइडेंटिटी, ये भी एक दूसरी चीज हो जाती है हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स में। मैं अपने आप को किस रूप में देख रहा हूं? जब जिस रूप में मैं अपने आप को देखूंगा, उसी रूप से मैं दूसरे को भी देखूंगा। तो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? तो इन दोनों बातों के आधार पर हमारे थॉट्स पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम थॉट्स के आधार पर, फिर देखो सारे वर्ल्ड पर हमारा प्रभाव पड़ता है। अब जो अच्छे विचार के लोग होंगे वो कहेंगे, नहीं दुनिया बहुत अच्छी है, चलो बिगड़ गई पर हम ही तो सुधारेंगे, और कौन सुधारेगा, हमें ही तो सुधारना है। दूसरा कहेगा, नहीं ये तो कोई सुधर, ये सुधरेगी नहीं दुनिया, ये तो है ही बिगड़ी हुई दुनिया, ये तो है ही ये संसार ऐसा, ऑलवेज नेगेटिव। और तीसरा कहेगा, बिगड़ा हुआ कहाँ है, यही तो दुनिया है, यू नो, सी द कॉन्शियसनेस। जो आज सवेरे आपको बताया, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कल किसने देखा, हु हैज सीन टुमारो, पता नहीं जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। इसीलिए जो मौका है उसका पूरा फायदा उठाओ, जो भी है, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, नाचो गाओ तमाशा शराब जुआ, ये सब जो कुछ है ये भगवान ने हमारे लिए ही तो दिया है। दिस ऑल्सो इज अ वैल्यू नो। और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मुझे कल का सोचना है, जो मेरा वर्तमान स्वरूप है ये पास्ट के कारण है। अब अगर मैं बचत करूंगा, मान लो धन भी मिला, मैं कल के लिए जरूर जमा करूं, ये ना हो कि कल के लिए मुझे कुछ ना हो। सो आई हैव टू सेव फॉर टुमारो, ही इज फार साइटेड। और दूसरा कहेगा, क्यों हम कल के लिए सोचे, जो होगा वो भी वैल्यू है अपनी, और दूसरे की भी वैल्यू है, पर वैल्यू को भी हम किस रूप से समझते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्फ आइडेंटिटी। अगर ये भी एक आइडेंटिटी है, आई एम द बॉस हियर, सो एवरी थिंग शुड बी अंडर माई इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, बॉस है तो क्या हुआ, सबको आप जैसे सोचते हैं सब तो नहीं सोचेंगे, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड, तो फिर हम सबको महत्व भी देंगे। जो आपको बताया होगा लीडर और बॉस दोनों में अंतर क्या है, लीडर एंड अ मैनेजर दोनों में अंतर क्या है, ही नेवर रिएक्ट्स ही एक्ट्स। एंड लीडर एंड मैनेजर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, अ लीडर पुल्स एंड अ मैनेजर पुशेस, ये बहुत बड़ा अंतर है। सो डू वी हैव टू पुल पीपल और पुश पीपल, पुल नॉट पुश, पुश मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, यू शुड डू एवरीथिंग, एंड पुल मीन्स आई डू फर्स्ट एंड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर यू टू डू आफ्टर मी। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ लीडर। सो इफ वी वॉन्ट टू द वर्ल्ड टू चेंज, आई नीड नॉट जस्ट से कि हाँ ठीक है यही दुनिया है या ये दुखमय दुनिया है, टू ऑप्टोमिस्टिक टू पेसिमिस्टिक वो भी नहीं, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। सो रियलिस्टिक मीन्स अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, थिंक ऑफ वॉट कैन बी द रिजल्ट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। सो इट हैज टू स्टार्ट विथ माई थॉट्स, एंड देयरफॉर देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग दैट एज इज द थॉट सो विल बी योर माइंड, and as your thought will be based on your values and self identity, so as is the thought so is the mind, as is the mind so is your consciousness, your consciousness will act accordingly according to your mind, and mind will act according to your thoughts, and thoughts will act according to your self identity or awareness which you are having in you, and as is the consciousness so is the mental state, your mental state will work accordingly. What comes first, patience should come first or truth should come first between the two, and as is the state so is the attitude, and as is the attitude so is the world. The attitude kaho, vision kaho, isko kehte jaisi drishti vaisi srishti, yani ki jaisi srishti vaisi drishti, सृष्टि के आधार पर दृष्टि न बने पर दृष्टि के आधार से सृष्टि बने, क्योंकि सृष्टि आपकी रचना है, दृष्टि आपकी अपनी चीज है, इट्स द क्रिएटर। तो हमारे संकल्पों का प्रभाव कितना दूरगामी है, इस पर इसकी गहराई में हमें जाने की बहुत जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कोई क्या फर्क पड़ता है, मैंने सोचा है ना किसी, ये थोड़ी कि मेरे सोच का प्रभाव कोई वातावरण पर पड़ेगा, व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक। लेकिन हमारे एक सोच का प्रभाव भी दुनिया पर असर डालेगा। किसी ने ठीक कहा, इफ इन द ईस्ट यू रेज योर फिंगर, इन द वेस्ट इट कैन क्रिएट अ अर्थक्वेक, यू नो। आजकल वो समय आ गया है कि टाइम इज रनिंग सो फास्ट, पहले जमाने की तरह तो नहीं है ना, जो महीनों महीनों लग जाते थे कहीं पहुंचने में, पत्र पहुंचने में, आजकल क्या है, कहीं पर कुछ भनक हुई तुरंत पहुंच गया। इंडिया ने यहाँ खाली एटम बम का वो एक्सपेरिमेंट ही किया, क्या हुआ उसका रिएक्शन, तो हम अपने देश में कर रहे हैं ना, हमारा देश हम जो चाहे सो करें, बट कैन वी डू इट, आई मीन कई बातें, वी हैव टू सी द वर्ल्ड, वी हैव टू सी द ग्लोब, वी हैव टू थिंक ऑफ मेनी थिंग्स, बिजनेस के अंदर भी ये सब आते हैं। इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर कि मेरे थॉट का प्रभाव कैसे सारी दुनिया पर पड़ता है, बिकॉज वॉट आई थिंक दैट आई विल स्पीक, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन, इवन इफ आई हाइड, मैं अपने मुख पर वो शब्द नहीं लाऊं, खाली मन में ही सोचूं, पर बहुत बहुत सोचूंगी आखिर क्या होगा, एक दिन वो मुख से निकल ही आएगा। यह कभी नहीं हो सकता है कि आपका खाली सोच ही चले और मुख से निकले ही नहीं। अब मुख से निकलेगा, बार बार आप वही मुख से निकालेंगे तो एक दिन जरूर कर भी लेंगे, नहीं करेंगे, इट विल हैपन, और फिर वही आपकी भावनाएं बनती जाएगी, सेम फीलिंग्स, अब वही वर्ड्स हुए, वही एक्शंस हुए, वही फीलिंग्स हुई, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वही आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। लोग भी ये कहेंगे ये तो गुस्से वाला व्यक्ति है, और एक दिन अगर आप बदलना चाहोगे ना तो भी कहेंगे ये बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, ऐसे है ना, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी बन गई है। एंड पर्सनालिटीज गो विथ योर हैबिट्स, आदत से मजबूर बन जाते हैं। हम चाहते भी हैं बदलना, लेकिन बाहर से दिखावा करेंगे बदलने का, लेकिन अंदर से सोच में तो परिवर्तन है ही नहीं, तो वो भी बनावटी लगेगा। लोग कहेंगे वाह बड़ा आया, देखा देखा, हाँ बस रह चुप होके बैठ जाओ। और किसी ने कहा भाई मैं यहां से लगा मैं बदल के गया हूं तो बड़ा परिवर्तन दिखाया, तो किसने मुझे कहा वाह बड़ा आया, सात चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यदि आजकल लोग टॉन्टिंग करने में भी बहुत होशियार है, बोलने में किसको क्या जाता है, किसका मुंह हम बंद भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे वर्ड्स एक्शन फीलिंग्स का असर अवश्य हमारी पर्सनालिटी और हैबिट्स पर पड़ेगा। अब उसका असर क्या होगा, हमारे बॉडी पर पड़ेगा। कल आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया होगा ना, तो स्ट्रेस का प्रभाव कैसे बॉडी पर पड़ता है, फिर संबंधों पर पड़ता है हमारे वही थॉट्स का। आज एक व्यक्ति घर में शराबी है, एक व्यक्ति, सारे घर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि एक व्यक्ति पर ही प्रभाव है, क्या होता है धीरे धीरे पूरे परिवार दुखी हो जाता है, संबंध कैसे बिगड़ जाते हैं। तो शरीर पर प्रभाव पड़ा, संबंधों पर प्रभाव पड़ा, वातावरण पर प्रभाव पड़ा, और फलस्वरूप हम देखते उसका असर दुनिया पर आता है। तो इसीलिए इफ वी वॉन्ट टू चेंज वी विल हैव टू चेंज फ्रॉम द सेल्फ। अब सेल्फ पर चेंज आने से कैसे सब बदल जाता है वो यहां दिखा है। लेट मी नॉट ब्लेम एनीबडी, फर्स्ट मेक माई सेल्फ पीसफुल स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। बिकॉज जैसे आपको वो लास्ट चित्र में बताया, यू आर वॉट यू थिंक। इफ यू थिंक यू आर हैप्पी, नोबडी कैन मेक यू अनहैप्पी, नोबडी। इसलिए सेल्फ शुड बी पीसफुल स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। दिस इज वॉट द सेल्फ इज मेंट टू बी, द हेल्दी स्टेट ऑफ द सेल्फ। नहीं तो आज बताए ना कि हम समझते हैं बोझ उठा रहे हैं, पर वो बोझ तो नहीं उठा रहे, पर जीवन भी हमारा बोझ बन गया है, वो आज की स्थिति दुनिया में देखते हैं। इसलिए सेल्फ मीन्स द सोल पीसफुल स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। अब ये मेरे सेल्फ की आइडेंटिटी है, तो मेरे माइंड में क्या संकल्प चलेंगे, क्लियर क्रिएटिव ट्रैंक्विल एंड अलर्ट। कई समझते मैं अपने आप को पीसफुल समझूंगा, पीसफुल हूं, तो फिर एम आई नॉट गोइंग टू बी वेरी पेसिमिस्टिक और बस पीसफुल हूं, नथिंग कुछ भी नहीं, आई बी वेरी इनएक्टिव, आई बी वेरी पैसिव, आई बी यू नो नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन नहीं, जितना आप पीसफुल है उतने आप क्रिएटिव हैं। जितने भी आज बड़े बड़े वैज्ञानिक होकर के गए हैं, जितनी उनकी पीसफुल स्थिति होगी उतनी वो क्रिएटिव ज्यादा बने होंगे। कोई भी इन्वेंशन करने के लिए उनको अंडरग्राउंड जाना पड़ता, तब जाके कोई इन्वेंशन वो कर पाते थे। और जितना ही आपका माइंड क्लियर क्रिएटिव ट्रैंक्विल अलर्ट, योर बॉडी विल बी डिजीज फ्री स्ट्रांग एंड बैलेंस्ड। ये भी बहुत जरूरी है, एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट। एंड इफ माय बॉडी इज डिजीज फ्री स्ट्रांग एंड बैलेंस्ड, व्हाट विल माय रिलेशनशिप्स बी, नेचुरली हार्मोनियस ट्रूथफुल एंड लवफुल। अब हार्मोनी रिलेशनशिप हार्मोनियस है तो सोसाइटी क्या बन जाएगी, ईच वन, यही तो सोसाइटी मीन्स समूह ना, इट्स वी आर नॉट इंडिविजुअल, सोसाइटी इज नॉट अ वन पर्सन, सोसाइटी मीन्स अ गैदरिंग। सो सोसाइटी विल बी ऑर्गेनाइज जस्ट एंड पीसफुल, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द एनवायरमेंट क्लीन हार्मोनियस एंड बैलेंस्ड अगेन, जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप्स एंड योर बॉडी। सो वही आपका एनवायरमेंट बन जाएगा, एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट नो। So how do we start? How do we change our mental state? We have to change the mind. And how do we change the mind? By changing our thoughts. And how do we change our thoughts? By changing our self-identity and our values. अब इसके लिए पहली बात, how to start? I have to start from myself. I cannot start from anybody else. So, मैं अपने अंदर क्या determination लाऊं? If I want harmonious relationship with myself, with my family, with my colleagues, with my boss, with my subordinates, with my environment, even with God, you know, we need harmonious relationship with everybody. So how to start? How to know which value is right at this time? Where is the demarcation line? How do you measure? जैसे सोना होता है ना, तो सोना को कैसे पता पड़े ये शुद्ध है या अशुद्ध है? कैसे कैसे क्या करते हैं उसके लिए? उसको एक कसौटी होती है, शायद पत्थर होता है, उस पर वो रगड़ते हैं, घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो जिसके आधार से उनको पता चलता है। ये सोनार को ही पता चलता, हम लोगों को इतना नहीं पता चलेगा। हम लोग सोचेंगे ये सब सोना है, बट ही विल से कि नहीं नहीं ये सोना नहीं है। तो हाउ डू वी स्टार्ट, व्हाट टू डू? तो एक लक्ष्य हम सदा रखें कि मुझे हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना है, हर परिस्थिति। आपको कल पॉजिटिविटी के बारे में कुछ बताया होगा, कल उषा बहन ने बताया ना, जो 9:30 की क्लास में उषा बहन ने क्या बताया, सुबह 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 हुआ था आपका क्लास 9:30 वाला। अच्छा, पैराडाइम शिफ्ट बताया। तो उस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर भी आप देखेंगे, जब केओस का टाइम आता है, व्हाट डू यू नीड टू डू? यू हैव टू चेंज। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट इज नीडेड फॉर द मोमेंट और एट दिस टाइम, इज अ वेरी इसेंशियल फैक्टर। मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, अब रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया, यू नो सिंपल एग्जांपल, आपकी गाड़ी को चोट लगी, अब आप उस समय क्या करेंगे, क्या रहेगा आपका एटीट्यूड? झगड़ा चालू कर देंगे ऐसे? हाँ, आजकल तो यही होता है ना, झगड़ा चालू हो गया है, तुमने होगा, तुम बीच में आके, नहीं तुम बीच में आ गए, आखिर कौन बीच में आया पता ही नहीं, हु इज द, देयर इज नो विटनेस ना भाई, विटनेस हो तो अच्छा, विटनेस का सुनेगा भी कौन? वो कहेगा मैं सही हूँ, वो कहेगा मैं सही हूँ, बस लड़ना ही चालू कर देंगे। अब वो एक्सीडेंट तो हो गया, अब उसी वक्त पहला संकल्प क्या होगा? ओ जान बची लाखों पाए, दिस शुड बी योर फर्स्ट थॉट, इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जबरदस्त होता एक्सीडेंट, उससे तो थोड़ा ही लगा, बस कोई बात नहीं, ये तो फिर भी ठीक हो जाएगा, जान बची लाखों पर, ये कितना बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अच्छा झगड़ा भी किया, अच्छा मिलेगा क्या, बात तो हो गई, जो होना था वो तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं आप, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। कई बार हम ऐसे सोचते, पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देखा था मैंने, पता नहीं वो घर से झगड़ के आया ना इसीलिए ऐसे हुआ, पता नहीं ये ही ऐसा व्यक्ति मेरे किस जन्म का दुश्मन है, पता नहीं क्या 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 सोच लेते हैं, और बस अपनी मूड को बिगाड़ देते, वातावरण बिगाड़ देते, और बात तो कुछ नहीं होती, द रिजल्ट इज नथिंग। कई बार चलो ये तो फिर भी एक्सीडेंट हुआ, कई बार ये भी नहीं होता, अफवाह ही केवल होती है बस, और अफवाह से कितनी बड़ी बात बन जाती है, इतनी बड़ी बात बन जाती है, जो जब उस बात की अब अंत में जाओ तो पता पड़ता बात तो कुछ भी नहीं थी। इसीलिए कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ इतना सब कुछ मेहनत की, इतना झगड़ा किया, इतना भाई परिणाम तो चलो कुछ भी नहीं निकले, पर कारण क्या था? पहाड़ खोदा चूहा को या किसको निकालने लिए, और अंत में निकला क्या, वो भी मरा हुआ ही चूहा निकला, जो किसी काम का नहीं है। वही स्थिति आती है, यही कई बार हमारी बातों में ये होता है। इसलिए या पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या दिखाया है, टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। जैसे ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स में भाई आपके आगे दरवाजा खुला है आधा, अब गुस्सा भी आएगा ये क्या दरवाजा बंद किया है, पर आधा तो खुला है ना, तो आधा खुला या आधा बंद, आधा भरा या आधा खाली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक ना, हाउ यू सी इट। टू थिंक एडवांटेज ऑफ एवरी इवेंट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें एडवांटेज क्या है, नहीं जो हुआ सो ठीक हुआ, वे एडवांटेज क्या है इसका, हमने बताया था उस दिन कि पता नहीं यहां बताया था कि अगर समझो एक किसी कारण से आपको जो अनुभव हुआ वो बुरा हुआ, बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग जजमेंट, अ रॉन्ग जजमेंट कैन लीड यू टू अ बैड एक्सपीरियंस, इज इट नॉट, बट दैट बैड एक्सपीरियंस शुड हेल्प यू टू लीड यू टू अ गुड जजमेंट लेटर ऑन। सो बैड एक्सपीरियंस डज नॉट रिमेन अ बैड एक्सपीरियंस इफ यू हैव लर्न फ्रॉम इट। तो वो टू थिंक एडवांटेज ऑफ एवरी इवेंट मीन्स टू लर्न फ्रॉम दैट इवेंट सो दैट यू डोंट रिपीट इट इन द फ्यूचर। दिस इज द मीनिंग ऑफ टू थिंक एडवांटेज ऑफ एवरी इवेंट, टू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी वंस एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट योर ओन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स ऑल्सो। अगर आपके बुजुर्ग बड़े कहते हैं बेटा इसमें बहुत नुकसान होगा, अंडरस्टैंड इट कि वो ऐसे ही थोड़ी बुजुर्ग हमारा कह रहे हैं, वे अनुभवी हैं। वो कहते हैं देखो बेटा मेरे बाल ऐसे ही थोड़ी पके हैं ना, इतने मैंने आयु ऐसे ही थोड़ी जी जी है, आप मेरी बात मानो। अब हम कहेंगे मैं क्यों मानू, मैं भी कुछ अनुभव करूं ना। एक बच्चे को कहो कि बेटा आग में उंगली नहीं डालना, उंगली जलेगी। अब बच्चा कहेगा मैं भी तो देखू ना, उंगली जलेगी, ये मम्मी कह रही है डैडी कह रहे हैं, मानो घर में, तो बच्चा समझदार तो मान लेगा ना, पर जो जिद्दी होगा वो क्या करेगा, नहीं मानेगा। तो माँ कहेगी ठीक है करो अनुभव। अब जला दिया उंगली, फिर कहेगा मम्मी अभी इसको ठीक करो। अब मम्मी तो फिर भी दयालु है, चलो पट्टी बांध देगी, बेटा तुमने कहना नहीं माना। अच्छा वो हो गया, अच्छा कहने से फिर क्या होगा, वो तो जल गई ना उंगली। भले हम कहेंगे बेटा तुमने मेरा कहना नहीं माना ना, देखो ये हुआ, तो मम्मी कहेगा, बच्चा कहेगा अच्छा मम्मी सॉरी, पर बात तो हो गई। अब नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दैट, वी आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। हाउ विल वी नो दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम दर एक्सपीरियंस, वॉट विल बी माई रिएक्शन और एक्शन। ओके वी वॉन्ट रिएक्ट बट वी विल एक्ट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम समवन एल्स एक्सपीरियंस, टू फॉलो दैट। बट इट मे हैपन दैट वॉट ही हैज इज टेलिंग मी, एडवाइजिंग मी, डजंट अपील मी। नॉट ऑल एडवाइज इज अपील नो। आप कहेंगे पिताजी आपको क्या पता, आप तो बूढ़े हो गए, आजकल जमाना बदला हुआ, आपको क्या मालूम। बट शुड वी से दैट टू अवर सीनियर्स, टू अवर एल्डर्स, इज इट नॉट अ वेरी बिग इंसल्ट ऑन देयर, यू नो, ऑन आवर पार्ट टुवर्ड्स देम। सो व्हाट शुड वी डू, हाउ डू वी नो वी आर लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, गिव देम रिस्पेक्ट, दिस इज द रिजल्ट। अच्छा पिताजी जरूर, अंडरस्टैंड द एडवाइस, डोंट इग्नोर इट, डोंट निग्लेक्ट इट, डोंट रिफ्यूज इमीडिएटली। वो ऐसे ही नहीं कह रहे, देर मस्ट बी अ मीनिंग, मे बी इट मे नॉट वर्क, बट 100% वर्क नहीं करेगा ऐसी बात भी नहीं है। मे बी वी डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, अवर एल्डर्स नो। सो वॉट वी से इज दैट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। अभी आपके छोटे हैं समझो, आपका कहना नहीं मानते हैं, आप उनको कहते हैं कि आप मेरा अनुभव से सीखो सीखो, नहीं सीखता है, फिर आप क्या करेंगे, मारेंगे डांटेंगे गालियां देंगे, तुम क्यों नहीं मेरा सुनते हो। सो यू आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, उन्होंने गलत किया, बट हाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, what will be your action? Not a reaction, but what will be your action? Your action towards your seniors will be you will still respect them. And your action towards your juniors will be you will still love them. भले वो बच्चा गलती करके पर आप उनको मारेंगे थोड़ी और फिर भी प्यार करेंगे, उनको समझाएंगे भी, लेकिन मारेंगे दैट विल बी वर्स। वो तो रोएगा बच्चा और क्या करेगा, बेचारे पहले ही उसको दुख है और आप उसको मार रहे हो। सो व्हाट शुड बी योर बिहेवियर? लव फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट जूनियर वन, जिसने समझा नहीं, आपकी आज्ञा मानी नहीं। अच्छा, व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कलीग्स, जो इक्वल्स, क्योंकि इक्वल्स में तो और ही संघर्ष होता है। वो कहे मैं क्यों मानू, वो कहे मैं क्यों मानू। चलो बड़ों का तो आप मान लोगे, छोटों को तो आप मनवा लोगे, और समान को फिर टक्कर होता है। तो टक्कर की बजाय क्या करो, हाउ यू हैव लर्न, हाउ विल यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो, जो जो उसने गलती की। मीन व्हाट विल बी योर एक्शन, नॉट लर्न, बट व्हाट विल बी योर एक्शन, योर गुड विशेस, शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे हम कहते भाई शल भगवान उसको सुमत देवे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि देवे, क्योंकि मेरे तरफ से तो सद्बुद्धि नहीं लेगा। समान को तो देना भी मुश्किल है, छोटों को तो फिर भी दे सकते हैं ना, बड़ों को दे सकते हैं, बड़ों को तो चलो फिर भी हम देने की कोशिश, बड़े रिएक्ट नहीं करेंगे, छोटे भी रिएक्ट नहीं करेंगे, समान तो तुरंत रिएक्ट कर लेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या होगा, शुभकामना, शुभ काम भावना, मेर माई गुड विशेज विथ यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। सो दिस इज वॉट वी कॉल एज लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, दिस इज द रियल मीनिंग। तो इसीलिए आपको डरपोक समझेगा, आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं समझती हूँ। देखो समझाना फर्ज है, समझाना फर्ज है जरूर, ये नहीं कि हम समझाएं भी नहीं। समझाने का मतलब कोई बड़े बन के नहीं समझाएं, एक मित्र बन के समानता में आकर के कि मेरे मन मेरे विचार में ऐसी बात है, फिर भी जैसे आप समझ, सो गुड, व्हाट इज द हार्म, यू डोंट लूज योर रिलेशनशिप। मेरे विचार में ऐसी बात है, फिर भी आप जैसे समझो, आप उनको भी अथॉरिटी दे रहे, अपने विचार भी दे रहे, दिस इज योर गुड विशेस, समझे ना, योर गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन। देन टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक इज नॉट अ बैड थिंग, ऑप्टिमिस्टिक इज समथिंग वेरी गुड, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू, यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग। सो इसको कहते हैं टू मीनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक इन एवरीथिंग। व्हाट वी से इज फेलियर इज किलर ऑफ सक्सेस, फेलियर इज नॉट डिफीट। बिग डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड डिफीट, फेलियर माना असफलता एंड डिफीट मीन्स हार। तो असफलता हार नहीं है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। वो एक कहानी आती ना, एक राजा किंग्स क्रूज एंड द स्पाइडर, 100 बार बेचारा वो स्पाइडर चढ़ा फिर गिरा, फिर चढ़ा फिर गिरा, फिर चढ़ा फिर गिरा, आखिर चढ़ गया। और वो राजा की कहानी उसमें आती है कि वो एक बार वो असफल हुआ तो वापस आ गया, अब मुझे लड़ना नहीं है। पर वो स्पाइडर से उसने शिक्षा ली कि ये अगर स्पाइडर एक मकड़ी हार नहीं मान रही है, कितनी बार गिरी फिर भी चढ़ गई, आखिर चढ़ गई, तो मैं क्यों हार मान के बैठा हूं। दिस इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। फिर टू बी होपफुल, बिकॉज ऑप्टिमिज्म एंड होपफुलनेस गो टूगेदर। हम कभी भी निराशावादी नहीं बने कि मैं नहीं कर सकता, मेरी अंदर में पोटेंशियलिटी है, ये कॉन्फिडेंस ही हमको होपफुल बनाएगी, वो भी हम आगे देखेंगे। टू बी प्रोएक्टिव, टू बी रेडी फॉर एनी एक्शन, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव। टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, वी आर, इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, बहुत अधिकतर आप देखेंगे अपने आप आपके जो डायलॉग्स है या कन्वर्सेशंस है, आप प्रॉब्लम्स ज्यादा बताते हो. डू यू ऑल्सो फोकस ऑन सोल्यूशंस? हु विल टेल द सोल्यूशंस? हु विल टेल द सोल्यूशंस? कौन बताएगा सोल्यूशन? हम लोग ही बताएंगे ना. और हम लोग क्या करते हैं? डू वी रियली टॉक अबाउट सोल्यूशन और टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ओनली? कोई भी मीटिंग्स होती है तो प्रॉब्लम्स का डिस्कशन ज्यादा है या सॉल्यूशन का डिस्कशन ज्यादा है? एंड व्हाट इज द आउटकम? इसीलिए वो आते हैं ना, वो इसलिए वो मिसाल बताते हैं कि चूहे को, ये चूहों ने मीटिंग की, भाई इतनी बिल्ली बहुत समस्या लाती है, अब इसका हल क्या है, आखिर क्या हुआ, घंटी कौन बांधे? हल तो निकाला भाई, उसको घंटी बांधी जाए तो बिल्ली का पता चल जाएगा, तो हम सब चूहे भाग जाएंगे. सुनिए ना कहानी. लेकिन आखिर फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि बिल्ली को घंटी कौन बांधे, क्योंकि जो बिल्ली के आगे जाएगा वो तो गया काम से. अब मॉडर्न वर्ल्ड में इसका भी सोल्यूशन है. हमने एक किसी से सुना था, इसका बड़ा सुंदर मुझे ये वो पॉइंट लगी. उसने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. ये जो कहा गया है कि बिल्ली को घंटी कौन बांधे इज नॉट राइट टू से. आज की दुनिया में, साइंस के युग में, इज एनीथिंग इम्पॉसिबल? मैं तो कहूंगा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो उनके बिल्ली के दूध में स्लीपिंग पिल डाल देता. सोल्यूशन है. क्या सोल्यूशन है? कि बिल्ली के दूध में एक नींद की गोली डाल दो, बस. जहां उसको दूध मिल, जहां से उसको दूध लेना है, अब वो बिल्ली पिएगी तो क्या होगा? सो जाएगी, फिर घंटी बांध दो ना. अभी नींद कौन कराए बिल्ली को? तो स्लीपिंग पिल तो विज्ञान हमको सहयोग दे रहा है. सो इन दिस मॉडर्न एज नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो वेयर देर इज अ प्रॉब्लम देर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. बट सम पीपल लुक फॉर सोल्यूशन इन प्रॉब्लम एंड द पेसिमिस्टिक विल लुक फॉर प्रॉब्लम इवन इन सोल्यूशन. कोई सोल्यूशन उनको दोगे भी ना तो भी प्रॉब्लम. बट हाउ विल दिस बी पॉसिबल? तो सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं और वो समझते हैं वी आर मोर फार साइटेड एंड द रिजल्ट इज नो वर्क इज डन. We are where we are. We don't want to progress. We cannot, even if we want to, because we are not optimistic, we are not having a positive attitude towards anything. So, as I was saying, ki values or self-identity, ek bahut important cheez hai, jiske liye ye Rajyog meditation hum sikhate hain, ki Rajyog ki antargat humko self-identity ka pata chalta hai, ki main vastav mein hoon kaun. तो इसमें हम बहुत एक सुंदर उदाहरण ये देते हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत एक विषय है, कि हमारे अंदर की पोटेंशियलिटी को हम बहुत कम जानते हैं, दूसरे भी नहीं जानते हैं. शायद हम फिर भी कुछ ना कुछ जानते होंगे लेकिन दूसरे नहीं जान पाते. दूसरे तो केवल हमारा एक्सटर्नल फैक्टर ही देख पाते हैं, जो मेरा व्यवहार है, जिस प्रकार की मैं बातें कर रहा हूं या कर रहा हूं या कह रहा हूं, जो मैंने प्रैक्टिकल रिजल्ट दी है, वही वो देख करके हमारा अंदाजा लगा देते हैं. बट दे रियली डोंट नो द ट्रू मी. तो मैं वास्तव में क्या हूं उसका उदाहरण हम एक आइसबर्ग से देते हैं. आइसबर्ग के बारे में बताया आपको उषा बहन? किसने बताया ये? हा? किस प्रकार से बताया? हाँ, अभी उसको हम थोड़ा और डिटेल कहेंगे. ये जो आपको उसने बताया होगा 5 साल 7 साल 14 साल, ये बताया? अच्छा, 25% 10%, यानी ज्यादा नहीं है. अब ये जो आपको बताया होगा कि ये 10% ही आइसबर्ग का बाहर है सागर के, और बाकी 90% इज एक्चुअली बॉटम इज बिलो. जो आपका एक्सपोजर है टू द वर्ल्ड एंड प्रोबेबली इवन टू योर ओन सेल्फ इज हाउ मच? ओनली 10%. 90% नोबडी नोज ऑफ यू, समटाइम्स नॉट इवन यू योरसेल्फ. इसीलिए अब आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो राजयोग मदद करता है रियलाइज करने में। तो आप वास्तव में ये नहीं हो, लेकिन इस आइसबर्ग के अंदर जो सेंटर है वो हो। अब वो मैं हूं, वेरी वेरी पावरफुल एंटिटी। अब इस पावरफुल एंटिटी को मुझे समझना है कि मैं वो हाउ वी वर व्हेन वी केम, नॉट जस्ट एज अ चाइल्ड। गो बैक, आज जो हमने आपको सवेरे बताया था, हम उस परफेक्शन की स्थिति में ही आए थे और सारी वैल्यूज हमारे अंदर विद्यमान थी। एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर भी सब वैल्यूज है, बट ऑल आर इन अ डॉर्मेंट स्टेज। एक्सपोजर इतना नहीं है, क्योंकि ब्रेन इतना डिवेलप नहीं है जो वो बता सके, ऑर्गन्स इतने डिवेलप नहीं है जो वो व्यक्त कर सके, बट इज ऑल देयर। इसको हम कहते हैं इननेट वैल्यूज। इननेट वैल्यूज के बारे में बताया कुछ, थोड़ा बहुत बताया होगा कि नहीं? इननेट रिक्वायर्ड, नॉट इन मच डिटेल। 7 साल के बाद आप एक एक और अपने ऊपर एक लेयर लगा लेते हो। सो व्हाट वी गॉट इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में भी हमको शिक्षाएं मिली माता पिता से, बड़ों से, बेटा ये अच्छा है, बेटा ये बुरा है, बेटा ये। तो ये इननेट क्वालिटीज को बढ़ाया, नो डाउट। अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़े, हमको तो अच्छी बातें ही बताएंगे। फिर व्हाट वी गॉट इन यूथ, अब धीरे धीरे कैसे ये इननेट क्वालिटीज, जो अंतर की क्वालिटीज है, वो धीरे धीरे बदल जाती है, एक्वायर्ड क्वालिटीज में आ जाती है। हम बड़े होते हैं, वातावरण के प्रभाव में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कुछ सक्सेस जीवन में मिलती है, उसका ईगो आता है, सब लेयर्स बनते जाते हैं, हमारे अंदर ही लेयर्स बनते हैं। ये एक्वायर्ड क्वालिटीज हम धारण करते जाते हैं, माई पर्सनैलिटी डिवेलप्स ऑन दैट लेवल, और मैं धीरे धीरे अपनी एक्वायर्ड क्वालिटीज को ही अपना सच्चा स्वरूप मानने लगता हूं। मैं एक मैनेजर हूं, मैं 3 बच्चों की माँ हूं, मैं एक, मतलब जिस प्रकार से मैं, मुझे समाज में रहना है, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मैं धनवान हूं, अथवा जो कुछ भी है, ये सब आपकी क्वालिटीज बन जाती है एक्वायर्ड क्वालिटीज। लेटर लेटर धीरे धीरे ये सब जम जाता है। इसीलिए आपको बताया होगा कि आपका जो बाहर का फोर्स, तो चलो ये फोर्स है, पर भीतर का फोर्स आपका ऑपोजिट है, तो कहाँ आपको ड्राइव करेगा? आपको अच्छी बातें बाहर से बताई जा रही है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, यू वॉन्ट गो ऑन दैट लेवल, बिकॉज द अक्वायर्ड क्वालिटीज हैव इन्फ्लुएंस्ड यू एंड यू विल टेक द ऑपोजिट कोर्स। अब उसके लिए, इफ वी वॉन्ट टू क्रिएट अवर रियल आइडेंटिटी, आई हैव टू नो माई सेल्फ, हु एम आई, वॉट इज द सोर्स ऑफ माई आइडेंटिटी, हु इज द रियल मी। अभी आपको बताया गया, जब आपसे पूछा जाएगा आप क्या जवाब देंगे, कौन है हम सब? आप सब कौन हो? मैनेजर्स हो, माँ हो, पिता हो, हाँ, भाई हो, मामा चाचा काका हो, एक बॉस हो, हाँ, दिस इज द रियल मी। सो डिफरेंस बिटवीन द रोल एंड द आइडेंटिटी, माई रोल में भी डिफरेंट, आपका सुबह से लेकर के रात्रि तक अलग अलग रोल है। सवेरे आपका घर में रोल है, दिन में दफ्तर में रोल है, दोस्तों के साथ अलग रोल है, बच्चों के साथ अलग रोल है, पत्नी से अलग रोल है। इट्स अंडरस्टूड, बट डोंट फॉरगेट योर आइडेंटिटी, वॉट इज द रियल यू। सो और एम आई यूजिंग पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी फॉर द रोल, और एम आई वन और द अदर, वॉट इज द रोल एंड द पर्सनैलिटी, माई ट्रू पर्सनैलिटी, माई ट्रू मी, दीज आर माई इननेट क्वालिटीज। अभी वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। और एम आई बोथ, माई रोल एंड माई पर्सनैलिटी, और एम आई समथिंग डिफरेंट, माई आइडेंटिटी, माई ट्रू आइडेंटिटी। यू नो, वी मिक्सअप बिटवीन दीज वर्ड्स, आइडेंटिटी, रोल एंड पर्सनैलिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, रोल क्या है, और पर्सनालिटी क्या है? आई विल डिवेलप माई पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ माई रोल, बट आई विल फॉरगेट माई ओरिजिनल आइडेंटिटी एंड एक्सेप्ट माई रोल टू बी माई आइडेंटिटी, और परिणाम स्वरूप हम कई ऐसे कर्म कर लेंगे विच आर अगेंस्ट माई इननेट नेचर। फिर फिर अंदर ही अंदर मन खाता है, नेचुरली वी फील गिल्टी। अब थोड़ा सा हम ये स्पष्ट करेंगे कि नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू डिवेलप फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। अब तक हम क्या कर रहे थे, आउटसाइड से इनसाइड जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्वायर्ड क्वालिटीज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अब आपकी एक्वायर्ड क्वालिटीज क्या है, एक्सपीरियंसेस, दे आर योर AQs, वी कॉल देम AQs एंड वी कॉल देम IQs। सो योर AQs आर योर एक्सपीरियंसेस, योर एबिलिटीज, योर मेमोरीज, योर लर्निंग्स, योर हैबिट्स, योर बिलीव्स विच यू हैव डिवेलप्ड लेटर ऑन इन लाइफ बेस्ड ऑन योर रूटीन्स, ऑन योर रिलेशनशिप्स, ऑन योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर रोल्स। नाउ दे आर अफेक्टिंग योर वर्च्यूज एंड यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। जो आपकी बचपन में जो आपकी वैल्यूज थी, वर्च्यूज थे, विचार थे, बड़े होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बदल जाते हैं ना, क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल इननेट क्वालिटीज आर वेरी वेरी प्योर, पीस, लव, पावर, ट्रूथ, हैप्पीनेस, इक्विलिब्रियम, यानी बहुत कुछ है आपको किया होगा, यू नो योर टीचर्स मस्ट हैव डन ऑल दैट। सो दीज आर इननेट क्वालिटीज एंड दीज आर एक्वायर्ड क्वालिटीज। अब इन क्वालिटीज के आधार पर ये क्वालिटीज बने, और अभी क्या हुआ है, इन क्वालिटीज को हम महत्व दे रहे हैं और धीरे धीरे इसको खत्म करते जा रहे हैं, इसके आधार पर हम ये बना रहे हैं। वी आर मेकिंग अवर वैल्यूज एंड बिलीव्स और वी से अवर आइडेंटिटी होना चाहिए, इसके आधार पर हमारे ये वैल्यूज बने, नॉट इसके आधार पर ये। सो दिस इज हाउ वी लर्न। सो वॉट वी हैव टू डू इज बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिज IQs एंड EQs। IQs आर योर परमानेंट क्वालिटीज, योर इननेट क्वालिटीज आर सपोज टू बी योर परमानेंट क्वालिटीज, दैट इज योर वेरी एसेंस, दैट इज योर पोटेंशियल, एंड इट हेल्प्स, दे हेल्प यू टू गो बियॉन्ड। सपोजिंग आई नो आई एम अ पीसफुल सोल and there's a very very disturbed atmosphere, I can be very peaceful, peaceless, immediately I should realize my innate quality, I am a peaceful soul। ab main atma shant swaroop hu, ye soch karte hi I will go beyond that problem, you know, or those peaceless environment, and I'll know how to be detached। so this is called your IQ। And what are your AQs which can be changed? क्योंकि ये बाद में develop हुए हैं, they are not your original self। मनुष्य को अभिमान शुरू से थोड़ी होता है। अब degree आपने प्राप्त की, आपने कोई position प्राप्त की, तो उसका अभिमान आ गया। तो अभिमान कोई बचपन में थोड़ी था, बाद में आया ना, study किया, qualifications धारण किए, बड़ा मकान लिया, बड़ी business develop किया, जो कुछ भी है, आपको बच्चे हुए, जितने बेटे ज्यादा हुए तो अभिमान ज्यादा, बेटियां हुई तो थोड़ा कम फर्क होता है क्योंकि बेटे का नशा है कि मैं तीन बेटों का बाप हूं, बेटी तो पराई धन है, कहीं वो और ही डाउरी देनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी चिंता हो जाती है। तो इसलिए ये सब अक्वायर्ड क्वालिटीज है, ये एबिलिटीज, योर टैलेंट्स विच यू डिवेलप इन द लॉन्ग रन, एंड दी पैरामीटर्स ऑफ ईगो, नेम, फॉर्म, सेक्स, कल्चर, एज, ये सब आपके AQs है और ये आपकी IQs है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो AQs के बुरे नहीं है, बट इफ दे आर बेस्ड ऑन योर IQs देन नो प्रॉब्लम, इट्स नो प्रॉब्लम, बट इफ AQs आर कंट्रोलिंग योर IQs देन दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। सदा ही आपको अंदर ही अंदर पीड़ा, कष्ट, दुख, अशांति महसूस होगी बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ट्रू नेचर। अब उसके लिए वी हैव टू नो व्हाट इज द एनिमी। समझो आज हमारा देश कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है। अभी वास्तव में सोचो, पाकिस्तान या चीन ये सचमुच दुश्मन है? Isn't it based on our AQs? इट इज बेस्ड ऑन अवर एक्यूज, इज इट नॉट? क्योंकि ये हमारा देश है। अब थोड़ा सा सोचो, पाकिस्तान आया कहां से? गया तो भारत से ही, हमारा ही तो हिस्सा था। अब डिपेंड्स ऑन द यू नो ईगो, ये मेरा ही हिस्सा है, ये मुझे ही वापस लेना है, मैं एक इंच भी नहीं दूंगा। और याद आता है महाभारत, महाभारत की कहानी क्या बताती है? महाभारत की लड़ाई में क्या आता है? एक इंच जितनी भी मैं जमीन नहीं दूंगा पांडवों को, बस। ये हमारा एक ही है ना, मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं सो करूं। अब ये एक्यू ने काम किया, अगर आईक्यू होती तो आईक्यू क्या कहती? हम तो भाई भाई है ना, हम भाई भाई है। अब यहाँ क्या ऊपर से भाई भाई है, लेट अस सिट एंड नेगोशिएट, लेट अस सिट एंड टॉक, बट होता क्या है? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, क्योंकि इननेट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्वायर्ड। नाउ हाउ डू वी नो व्हाट इज अवर एनिमी? इसीलिए वो बहुत सुंदर एक कहावत है, बाइबल में आता है, हेट नॉट द सिनर बट हेट हिज सिंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एक सिनर भी होगा ना, भले उसने बड़े पाप किए हैं, लेकिन सचमुच अगर आप देखेंगे उसमें भी इननेट क्वालिटीज है। एक बहुत बड़ा खूनी, चोर, लुटेरा, डाकू, वो भी जब घर जाएगा तो अपने बच्चे को प्यार करेगा, उसका मुंह हिलाएगा, उसको खिलाएगा। पिता है ना वो, आखिर पिता तो है वो भी, बोले खूनी होगा तो बच्चे को कितना प्यार जताएगा? तो वास्तव में उसके अंदर वो प्यार तो है ना कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अब उस प्यार को वो सबको नहीं दिखा रहा है, केवल बच्चे को ही दिखा रहा है। जिसको मारा, अगर प्यार होता तो थोड़ी मारता, उसकी हत्या थोड़ी करता। लेकिन वहां पर एक्वायर्ड क्वालिटी आती है कि इसकी हत्या करा के ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरा नहीं तो मेरी पोजीशन चली जाएगी, जो कुछ भी बात है। तो हु इज योर रियल एनिमी? नाउ दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू नो अवर सेल्व्स and also know our enemy, not just ourselves, but we have to know our enemy also. So if you know yourself and you know your enemy, then really you know everything. If you know yourself but don't know your enemy, if you know yourself but not your enemy, for every battle you win, you will also experience defeat. If you know yourself, चलो आप विन, आप जीत तो गए, परंतु उस एनिमी को आपने सचमुच परखा नहीं, तो यू विल नेचुरली एक्सपीरियंस डिफीट। हाउ? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ। इफ यू नो योर एनिमी बट नॉट योर सेल्फ, डिफीट अवेट्स यू, क्योंकि आपको उसकी क्षमता का पता ही नहीं एनिमी का। जैसे वो मिसाल हमने पता नहीं आप लोगों को दिया या नहीं, वो चेस प्लेयर का दिया था मैंने। चेस प्लेयर एक था जिसने कंप्यूटर के विरुद्ध में खेल किया वर्ल्ड्स, हाँ वो दिया था। तो उसमें चेस प्लेयर हार गया और वो कंप्यूटर जीत गया, बिकॉज उसका पीछे आर्ग्यूमेंट क्या था उस चेस प्लेयर का? ही डिड नॉट नो इन व्हाट वे द प्रोग्राम वाज प्रोग्राम्ड इन और फेड इन द कंप्यूटर, सो ही ब्लेम द IBM पीपल, सॉफ्टवेयर पीपल को ब्लेम किया कि हमको पहले क्यों नहीं बताया कि आपने इसमें प्रोग्राम क्या डाला। मींस ही डिड नॉट नो द एनिमी, इसलिए एनिमी ने उसको जीत लिया, माना एनिमी ने उसको हरा दिया। सो इफ यू नो योर एनिमी बट नॉट योर सेल्फ, डिफीट अवेट्स यू। यू नो इट, इट्स वेरी पावरफुल, बट यू डोंट नो योर सेल्फ। यू नो योर सेल्फ बट डोंट नो योर एनिमी, देन ऑल्सो there is defeat. So if you don't know yourself and you don't know your enemy, you don't know both, then victory will elude you forever. You will never get victory. Therefore, know yourself and know your enemy. Ab hamari dushman kaun? Kaun hai hamare dushman? Hum hi, hum thodi hamare dushman. हम दुश्मन कब बनते हैं, जब कौन से दुश्मन का वार होता है, जब अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, कौन सा, क्या हमारे दुश्मन कौन है? नेगेटिव थॉट्स, जिसको हम कहते हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हमारे दुश्मन है, व्यक्ति दुश्मन नहीं है। अच्छा, मान लो पांडव कौरव की लड़ाई लगी, एक इंच भी मैं नहीं दूंगा, एक सुई जितनी, एक की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, व्हाट डज दैट इंडिकेट? अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, कामना, ये सारे विकार हैं, सब कुछ है। इफ यू रियली गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट, अगर ये कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, अच्छा कुछ तेरा और कुछ मेरा, इसमें क्या जाता, आखिर तुम भी तो अधिकारी हो, क्यों नहीं अधिकारी हो, भाई हो ना, वास्तव में पांडवों का ही तो राज्य होना था, लेकिन वह तो जबरदस्ती खींच लिया था, तो इसीलिए हम दोनों भाई भाई हैं, आखिर एक ही पिता के बच्चे हैं, तो दोनों का समान अधिकार है। अब ये कुछ त्याग, कुछ समर्पणमयता, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, तो देखो वही मिलके रह सकते हैं, लेकिन आज ये भी तो डर है ना कि मैं अगर दू वो तो इतना दूंगा इतना ले लेगा। आजकल ये भी है कि किसी को मैं एक उंगली दूंगा तो मेरा पूरा हाथ ही खींच लेगा, अब ये भी फियर, फियर, तो ये दोनों तरफ के विकार तो है जो काम कर रहे हैं, बट हु इज द अल्टीमेट विनर? लेट अस थिंक ऑफ दैट, हु इज द अल्टीमेट विनर? हम गए कुछ साल पहले, हम स्विट्जरलैंड गए थे, यूरोप में, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनीवा, तो जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, जैसे न्यूयॉर्क में है वैसे जिनीवा में भी है, तो वहां एक बहुत बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार, मैं समझती हूँ इससे 10 गुना बड़ी होगी, वेरी ह्यूज, जैसे वो अपना ज्ञान सरोवर का हॉल है ना, हार्मनी हॉल, इतनी बड़ी साइड वाली दीवार थी, और वहां पर एक चित्र बना था, वेरी बिग पिक्चर, हेडिंग थी हु इज द विनर, तो उसमें 3 भाग बताए गए थे। पहले भाग में समझे एक सेना इस भाग में, एक दूसरी सेना ऑपोजिट एनिमी उस तरफ, तो जो इस तरफ की सेना थी उनका उनके वो उनका सिर झुका हुआ है, दे आर मोर्निंग, और इस तरफ की जो सेना थी उनका सिर ऊपर है, दे आर रेडी टू रिवोल्ट, और जो बीच में था इट इज ऑल डेड बॉडीज, डेड बॉडीज, शमशान, माना युद्ध हो गई है और सब मरे पड़े हैं, तो जो बच गए हैं दोनों तरफ के, एक तरफ रिवोल्ट के लिए तैयार है और एक तरफ का सिर झुका हुआ है, अब हु इज द विनर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन पुट टू अस, वाज पुट टू अस बाय द गाइड। अब हर एक ने अपना अपना जवाब दिया, किसने कहा कि ये जो है ये विनर, किसने कहा वो जो मर गए वही विनर, मतलब वो शहीद हो गए, बहुत कुछ जवाब दिया, तो अंत में रिजल्ट ये निकले, नोबडी इज द विनर, नो वन। वैसे युद्ध में जिन्हों का सिर नीचे था वो विनर थे, विनर थे, कैसे? क्योंकि उन्होंने तो जीता, लेकिन जीतने के बाद भी वो जब अपने अपने लोगों को देख रहे कि इतने सारे लोग मर गए, तो उनका दुख उनको सता रहा था कि इस युद्ध में इतने मर गए, जीता तो क्या जीता, इतने सारे हमारे मर गए, लेकिन जिन्हों का सिर ऊंचा था वो हार गए थे, पर दे वर रेडी टू अटैक अगेन, इसीलिए उनको ये दुख नहीं था कि इतने लोग हमारे मर गए, का कोई बात नहीं, ये शहीद हो गए ये शहीद हो गए, अब हम फिर से लड़ेंगे, बट हु इज द विनर? नो वन इज द विनर, ऑल आर लूजर्स, क्योंकि इस अनुसार जीत होती ही नहीं है, देयरफॉर अंडरस्टैंड दैट योर एनिमी इज नॉट आउटसाइड, योर एनिमी इज इनसाइड, अब उस इनसाइड के एनिमी को हम खत्म करेंगे, और कैसे खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि अंदर का एनिमी बाहर दिखाई देता है, हमारे रिलेशनशिप्स में दिखाई देगा, संबंध हमारे बिगड़े हुए होंगे, वातावरण में दिखाई देगा। आप किसी एटमॉस्फेयर में जाइए, आपको लगेगा वेरी हैवी एटमॉस्फेयर, वेरी हैवी, आपको लगेगा बस यहां से भाग जाऊं क्या, अच्छा नहीं लगता है, यू वोंट लाइक टू स्टे देयर लॉन्ग। और किसी एटमॉस्फेयर में जाएंगे, यू लाइक टू बी देयर ऑल द टाइम, लाइक हियर, यस यू लाइक टू बी हियर एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग बिकॉज इट्स सो लाइट, सो हैप्पी, सो यू नो लाइक दैट, यू आर एंजॉयिंग इट बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ यू एंड वॉट इज पार्ट ऑफ यू दैट यू आर रिसीविंग ऑल्सो आउटसाइड, देयरफॉर यू लाइक इट, एंड वॉट इज नॉट पार्ट ऑफ यू एंड यू आर गेटिंग इट आउटसाइड, यू विल रिपेल, यू विल वॉन्ट टू गो अवे। सो ये जो हम देखते हैं जीवन में या परिवार में या समाज में या हमारे दफ्तरों में, हमारे वर्क प्लेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द एनिमी इनसाइड। सो हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। जब तक हमने इसकी साइकोलॉजी नहीं समझी है, हम इसको नहीं खत्म कर सकते हैं, देयर इज नेवर अ सोल्यूशन। सो वी से द साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिवेलप्स बिकॉज ऑफ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज। Why do conflicts arise? Clash of personalities. I think I am this and you say, well, I am this too. So, clash of personalities. Conflicting desires. उनकी अपनी इच्छाएं हैं, मेरी अपनी इच्छाएं हैं. So, conflicting desires. अगर समान desire हो तो घर में आप देखो, आपका बच्चा कहेगा मुझे टीवी देखनी है, मम्मी कहेगी नहीं मुझे सोना है, डैडी कहेंगे मुझे अखबार पढ़ना है, अभी क्या करेंगे, एक ही कमरा है, कब क्या करेंगे, लड़ेंगे ना। तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, अब थोड़ा सा तो त्याग करो, तीनों ही त्याग करो, तीनों ही सो जाओ भाई, टाइम को देखो, समझो व्हाट डज टाइम टेल अस नाउ, इट इज टाइम टू स्लीप। तो टाइम टू स्लीप, देयरफॉर वी शुड गो टू स्लीप। तो बच्चा भी त्याग करे और पिता भी त्याग करे, मम्मी का कहना माने, क्योंकि वो ज्यादा समझदार है, उसको पता है कल सवेरे जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये काम करना है ना। सो कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स, विच लीड टू नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक एंड एंगर। हम लोग वैसे कहते हैं मैग्नेटिज्म में, अनलाइक पोज अट्रैक्ट, बट एक्चुअली लाइकनेस विल अट्रैक्ट, अनलाइकनेस विल रिपेल ना। कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स माना दे विल रिपेल, अलाइक थॉट्स विल अट्रैक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट इज देन फैसिलिटेटेड बाय लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अब दैट बिकम्स वर्स। चलो आप कम्युनिकेट करो, भाई मेरे मन में ये विचार है, वो कहेगा मेरे मन में ये विचार है। कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी तो विचार ही बताएंगे नहीं, चुप रहेंगे। अब चुप रहेंगे दैट मेक्स इट वर्स, उसको कैसे पता पड़ेगा कि आपके मन में क्या विचार है। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन अलग, फिर ये अग्रवेट कैसे होता है कॉन्फ्लिक्ट, स्टबर्ननेस, मैं नहीं मानूंगा, अनविलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज और फॉरगिव एंड इट लीड्स टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सदा के लिए दुश्मन, घाव कभी नहीं भरेंगे सारे जीवन भर, भले आपस में सगे भाई क्यों ना हो, होता है ना, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब उसके लिए अगर ये सब खत्म करना है और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स लानी है, बिहेवियरल मैनेजमेंट को समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द हायर द एक्वायर्ड क्वालिटीज, कैसे इनको हमें खत्म करके और इननेट क्वालिटीज के तरफ से ही व्यवहार करना है। क्योंकि एक्वायर्ड एक्वायर्ड दोनों आपस में संघर्ष होगा, करेंगे माना सामना करेंगे, टक्कर लाएंगे तो लड़ाई होगी। अब ऐसे एक सिचुएशन है, आप देख रहे हैं, ये है एक्वायर्ड और ये है इननेट। अब एक्वायर्ड पर्सनालिटी या जो कुछ भी आपके एक्सटर्नल विचार हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर। सो ए एक्ट्स विद एंगर बेस्ड ऑन द एक्यूज एंड बी रिएक्ट्स इन द सेम वे, झगड़ा चालू हो गया। फिर अब ना इफ यू वांट टू चेंज द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट शुड यू डू, At least one should change, na? If none of them change, then it will reach a point of no return. It will increase and increase, and ultimately you will be enemies forever. So instead, A acts with anger based on his AQs, and B reacts with comprehension. Manna, the reaction is not in that way react, but acts with comprehension, with understanding and the vision of the IQs of A. Agar dusra B sochta hai ki dekho, bhale ye aise kehta hai, lekin hai bahut achha aadmi. He is a very good man. Okay, doesn't matter, he doesn't understand now. But iske man mein koi burai nahi hai. Now he is thinking positive. To kya hoga? अगर बी ए की इननेट क्वालिटीज को परख लेता है और उसका विचार करता है मन में, तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज पर उसका ध्यान जाएगा. अब ये उसके इननेट क्वालिटीज को रिवाइव करेगा और वो वापस अब उन अपनी इननेट क्वालिटीज को उनसे उस संपर्क उसी संपर्क में आएगा. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? बी स्टार्ट्स टू इन्फ्लुएंस ए पॉजिटिवली बाय कीपिंग हिज विजन फर्मली ऑन द आईक्यूज. And both start to harmonize. Now this is what we need. What do we need? The third situation. In a very interesting saying, a fort under siege with its soldiers fighting each other has less chance of survival. Ek fort ke andar jo apne soldiers aapas mein lad rahe ho, to kya hoga? वो फोर्ट कभी बच सकता है? बाहर का अटैक तो उसको एकदम से खत्म कर देगा, क्योंकि अंदर ही लड़ रहे हैं आपस में. जैसे हमारे देश में आपस में ही पार्टियां लड़ रही हो, तो अगर दूसरे देश का आक्रमण होगा तो खत्म, फिनिश्ड. भले कितनी भी हमारे पास शक्ति क्यों ना हो, कितना भी हमारे पास मैन पावर हो, मशीन पावर हो, मनी पावर भी हो, लेकिन व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसलिए कहते हैं भाई, हमारे देश पर इतना बड़ा ये समस्या है, लेट अस कम टू गेदर. कहते हैं ना, एक होने की जरूरत है, तो एक होकर के ही हम संघर्ष कर सकते हैं. बट एक होकर के उनकी भी इननेट वैल्यूज को जान लो, तो देखो एक और एक 11 बन जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हार्मोनाइजिंग विथ ईच अदर. अब उसके लिए I have to have my self-respect. मैं सार में पूरा कर दूंगी. My self-respect is very essential. I have to keep my self-respect. समझो, मान लीजिए किसी ने मुझे कहा तुम मूर्ख हो. Very simple. आप मूर्ख हो. Now what will be my reaction? What should be my reaction? You are stupid. Supposing somebody tells me, what should be my reaction? ईट का जवाब पत्थर से नहीं ना. तो किसने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, तो मैं कहूंगा अच्छा तुम मुझे मूर्ख कहते हो, तो महामूर्ख हो. Supposing अगर अब इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले मैंने एक्सेप्ट किया. मैं अगर एक्सेप्ट ही नहीं करूं कि मैं मूर्ख हूं, तो मुझे महामूर्ख कहने की जरूरत ही नहीं है. भले आपने मुझे कहा, आई डोंट एक्सेप्ट ना. अच्छा तुम मुझे मूर्ख कहते हो, अच्छा तुम महामूर्ख हो, मीन्स फर्स्ट एक्सेप्टेड कि मैं हूं और तुम मेरे से ज्यादा हो. ऐसे ना, हियर द फर्स्ट थिंग इज योर सेल्फ आइडेंटिटी. मैं कौन हूं? वो तो बेचारा नहीं जानता है ना मैं कौन हूं. वो तो मेरी अक्वायर्ड क्वालिटी देख रहा है, मूर्खता देख रहा है. व्यवहार में देखा होगा मूर्खता, तभी तो कह रहा है. पर मेरी इननेट क्वालिटी क्या है? मैं तो एक ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप आत्मा. दिस इज माई सेल्फ आइडेंटिटी. अब उस सेल्फ आइडेंटिटी के आधार पर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए. I should have respect for myself. किसी ने मुझे कह दिया तो मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई अपने लिए. यानी am I so fragile? एम आई सो फ्रेजाइल कि एक पत्थर मारा और मैं टूट गई, इज शुड दैट बी माई स्टेट? तो सेल्फ आइडेंटिटी विल लीड टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, फिर जब सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर है कि मैं तो इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र आत्मा, आई एम अवेयर ऑफ माई इननेट क्वालिटीज, देन सेकेंड आई विल बिगिन टू अप्रिशिएट माई सेल्फ। देयर इज नो हार्म इन अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। नॉट दैट आई हैव टू टेल आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट। आई नो वॉट आई एम, आई नो हाउ टू अप्रिशिएट माई सेल्फ। हम दूसरों को तो अप्रिशिएट करते हैं ना, समझे, किसी ने अच्छा काम किया अप्रिशिएट करते हैं ना, हम खुद को भी कर सकते हैं कि वो ईगो आ जाता है, फिर ईगो आ जाता है अप्रिशिएट करने से। कैन आई नॉट अप्रिशिएट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, माई सेल्फ, माई आइडेंटिटी, दैट आई एम अ पीसफुल सोल? कैन आई नॉट अप्रिशिएट दिस? अच्छा, जैसे हम दूसरे के लिए कितना शांति, देखो ये कितनी शांति में रहती है, सो पीसफुल, आई कैन अप्रिशिएट माई ओन वैल्यू ऑल्सो, कि मैं भी तो वो पीसफुल सोल हूं। नाउ व्हेन आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई लर्न टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। दूसरे भले मुझे एक्सेप्ट ना करे, आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ बिकॉज आई नो वॉट माई ट्रू वैल्यू इज। आई बिगिन टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज बेस्ड ऑन सेल्फ अप्रिसिएशन। देन व्हेन आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, डेफिनेटली आई हैव अप्रूव्ड इट, यस आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मूर्ख नहीं हूं। This is self-approval, and that self-approval will lead to self-confidence. So self-confidence is based on self-approval. And when I am self-confident, I believe myself. I don't have to believe what others say. Usne keh diya murak, I believed it. So my self-approval or confidence will lead to my self-worth, which then will lead to self-belief. अब ये आठ बातें हैं which also can go like this, you know, they are proactive. Like identity will then lead to appreciation, will lead to approval, to worth, to respect, acceptance, confidence and belief. You can take it this way or you can take it this way. So this is what we call as understanding yourself or steps of self-esteem. स्वयं को पहचानो और स्वयं के कर्तव्यों को जानो। हम क्यों आए इस संसार में? अपने सत्य स्वरूप को व्यक्त करने के लिए। दिस इज अवर रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस को अगर हमने जान लिया तो बाकी सब बातें दे बिकम वेरी वेरी ट्राइफियल, अगर ये ट्रिवियल, अगर ये बीच में विघ्न आते हैं या कुछ भी आते हैं, आई रियली कैन ओवरकम देम इजिली बिकॉज आई नो माई पर्पस ऑफ लाइफ। My vision is very clear, my purpose is clear, my values are clear, then everything can happen very easily. I can overcome my problems easily. अब इसके लिए लास्ट में हम ऑफिसर्स को बहुत ऊंची बात बताते हैं। ये एक सार है अपने जीवन का। सदा इस सार को अपने जीवन में अपनाओ तो आप स्वयं पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? स्वयं पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद, तीनों ही पसंद बनना है। खाली स्वयं पसंद नहीं, क्या बनना है? मैं अपने आप को ही पसंद करता हूं, नहीं, स्वयं पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद, तीनों में पहले किसको, पहले किसका पसंद बनना है? नो बिफोर स्वयं, क्योंकि अगर केवल स्वयं पसंद पहले होगा तो ईगो आ जाएगा। हाँ, प्रभु पसंद पहले, क्या ईश्वर को क्या पसंद है? हाँ? कि मैं लड़ूं, झगड़ूं, मारूं, पीटूं, दुखी हो जाऊं, रोता रहूं, चिल्लाऊं, यही भगवान को पसंद है क्या? हाँ? ईश्वर को क्या पसंद है? यही हम लोग सदा सोचते हैं, मुझे प्रभु पसंद बनना है। पर प्रभु पसंद के बाद लोक पसंद, यस, क्यों नहीं? आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। अगर कोई कहता है ये तुम्हारी गलती है, ओके आई चेंज, ओके ठीक है, तुम खुश रहो, बस नो प्रॉब्लम, इसमें क्या है? लोक पसंद, फिर स्वयं पसंद का तीसरा स्टेज क्यों रखा कि आपने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को नष्ट नहीं किया है. इट इज वेरी मच इंटैक्ट बट यू नो हाउ टू डील विथ अदर्स. यू हैव नॉट लॉस्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट. इसीलिए हम बताते हैं कि फॉर ऑफिसर्स सिट ऑन द चेयर ऑफ ह्यूमिलिटी. उस कुर्सी पर तो आप बैठते हो अपनी ऑफिस में, मैनेजरियल पोस्ट पर बैठते होंगे या जो आपकी ड्यूटी है, बट डू यू ऑल्सो सिट ऑन द चेयर ऑफ ह्यूमिलिटी? डू यू? यस. अभी रोज अपनी चेकिंग करना, डेली रूटीन ऑफ अ ऑफिसर, सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ ह्यूमिलिटी. अब अपनी जो कलम आप चलाते हो ना ऑफिस के टेबल पर, उस कलम को कमल बना सकते हो? हाँ? कमल बनाओगे तो कमाल करोगे आप. कमल भी और कमाल भी. तो कमल बनाओ तो हाउ विल यू मेक इट अ कमल? बी डिटैच्ड एंड इम्पार्शियल वाइल राइटिंग. कैन यू बी दैट? बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये इम्पार्शियलिटी खत्म होती जा रही है. इसलिए देखो, ये भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, ये दुनिया में जितना बुरा व्यवहार हो रहा है, बिकॉज पार्शियलिटी इज कमिंग इनसाइड. एक के प्रति पक्षपात है, दूसरे को गिरा रहे हैं. सो दिस इज वेयर वी हैव टू लर्न टू बी लाइक अ कलम, यानी कमल. तो अपने कलम को कमल बनाओ. फिर फाइल्स जो आप खोलते हो, तो वो फाइल्स आप कौन से साथ में फाइल्स दूसरे भी खोलो अपने जीवन के. व्हाइल डीलिंग विद ऑफिस फाइल्स, रिमेम्बर योर ओन फाइल ऑफ कर्मा. वकीलों को उस दिन बताया था ना हमने, आप पता नहीं यहां बताया, कि डबल वकील बनो, बताया था ना. तो डबल ऑफिसर बनो भाई, आप डबल ऑफिसर बनो. डबल वकील तो वकीलों को बताया, आप ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स को डबल ऑफिसर बनना है. कैसे? अपने कर्मों का फाइल भी साथ साथ खोलना. केवल वो फाइल नहीं, वो तो खोलो ही, काम करना है. बनाया ही नहीं है? ओहो, तो फिर अब बनाना शुरू करना. वही ना, फाइल बनाना शुरू करो. अंडरस्टैंड दैट वो आपका फाइल रिकॉर्ड हो रहा है भगवान के पास, भले अभी पता नहीं चल रहा है. बताते ना, धर्मराज के पास चित्रगुप्त बैठे हैं. चित्रगुप्त क्या कर रहे हैं? हाँ? आपका हर कर्म का फाइल वो बना रहे हैं. इसीलिए उसके पास तो रिकॉर्ड है, पर अपने पास भी रिकॉर्ड रखो. और फिर अब ऑफिस में चलते फिरते हो तो क्या करो? प्रैक्टिस मूविंग अबाउट इन योर स्टेज फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस. जब जब व्यवहार में आओ, फिर से आप अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में ले जाओ. तो हम लोग बताते अपने ऑफिस में भी, चाहे घर में, हर घंटे घंटे एक एक अभ्यास करो. हर घंटे एक मिनट जस्ट विड्रॉ फ्रॉम योर बॉडी कॉन्शियस स्टेट एंड बिकम अ सोल. आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम द चाइल्ड ऑफ शिवा, आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड एज अ गेस्ट. यानी एक बहुत सुंदर एक विड्रॉल की स्टेज है, जिसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की स्टेज में चले जाओ. और उस सोल कॉन्शियस की स्टेज में हम प्रैक्टिस करें मेडिटेशन को, चाहे एक मिनट के लिए ही सही, एक मिनट बस, ज्यादा मत करो. और ये प्रैक्टिस आप अपनी कीजिए, मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से भिन्न हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं ये रोल हूं, न मैं ऑफिसर हूं, न मैं ये जो रोल बजा रहा हूं, ये मैं हूं, ये मेरी असली आइडेंटिटी नहीं है. सो बिकम अवेयर ऑफ इट. सो व्हाट एम आई? आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. आई एम नाइदर द बॉडी नॉर द रोल. फिर आई डिटैच, अभी डिटैच हो जाओ. एक कछुए को भी अकल है डिटैच होने का. यू नो, कछुआ देखा है ना आपने, क्या करता है कछुआ? देखा है वो इंद्रियां कैसे निकालता है जब चलना है, जब नहीं चलना है तो हाँ, अपने हाथ, अपने पैर, अपना सिर भी अंदर ले लेता है. वही वही एक हार्ड शेल है उसके ऊपर, तो ये अब अपने आप को बचा लेता है, सेफ कर लेता है. सो आई डिटैच एंड ऑब्जर्व माई बॉडी एंड द सीन्स गोइंग ऑन अराउंड मी. कैन आई बिकम अ डिटैच ऑब्जर्वर? साक्षी दृष्टा की स्थिति जानते हैं आप? आप एक पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर देखते समय आप साक्षी दृष्टा होते हैं ना, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप प्रश्न पूछ रहे हो ये क्यों ये क्यों ये क्यों, तो क्या होगा? कैन यू एंजॉय द फिल्म? कैन यू एंजॉय? इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय द फिल्म व्हाट शुड यू डू? सो डोंट आस्क क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस पूछ के हम अपने आप को भ्रमित कर देते, ये इसने ऐसे क्यों मेरे से किया, ये क्या समझता है अपने आप को, क्या समझा है, अब क्या हो गया, इससे क्या होगा? कंफ्यूज्ड. हमारी मेंटल ड्रेनेज है, थॉट्स की ड्रेनेज है. इसीलिए आई डिटैच एंड ऑब्जर्व माई बॉडी एंड द सीन्स गोइंग ऑन अराउंड मी. आई रिजेक्ट ऑल नेगेटिव थॉट्स अबाउट मी. चाहे लोग कितना भी कुछ कह रहे हैं, आई शुड नो हाउ टू रिजेक्ट. एक कछुआ होता है उसके ऊपर है ना, कहते बड़े बड़े कछुए होते हैं ना, अगर ट्रक भी चला जाए तो भी क्या होता है, वो ट्रक भी उस कछुए को मार नहीं सकता है ना. ट्रक इतना हैवी वेट, वो कछुए का जो वो ऊपर का शेल इतना स्ट्रांग होता है, जो बहुत बड़े होते हैं, छोटे की तो बात दूसरी होगी, वेरी सॉफ्ट, लेकिन जो बड़े बड़े कछुए होते हैं एंड दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो इसीलिए हम क्या करते, प्रोटेक्शन कैसे करते, रिएक्शन से. दैट इज नॉट द रियल वे ऑफ प्रोटेक्शन. समझो कोई कोई गोली भी मार रहा है, एंड आई हैव नो अदर प्रोटेक्शन, विच इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? झुक जाओ, है ना, कौन सा तरीका है? अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? तो उस समय झुकना बहुत सबसे बेस्ट है. इसीलिए आई रिजेक्ट ऑल नेगेटिव थॉट्स अबाउट मी, बट दैट इज नॉट इनफ. आई रिजेक्ट से मैं नहीं मानता, डोंट से, एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस एंड डिजायर्स. दिस इज वॉट आई शुड बी डूइंग. इसी को ही हम मेडिटेशन कहते हैं, और ये मेडिटेशन एक कवच का काम कर लेता है. आई बिकम फ्री फ्रॉम अटैक्स, दे डोंट अफेक्ट मी. इसीलिए मेडिटेशन का हम अंत में क्या स्वरूप बताते हैं कि अंडरस्टैंड एंड ब्रिंग ऑन द सरफेस योर इननेट क्वालिटीज. सो फॉर दैट वी विड्रॉ फ्रॉम द आउटर बीइंग, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड सेंसेस, देन कॉन्टेम्पलेट ऑन योर इनर सेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, रेडिएटिंग पावर पॉजिटिव एनर्जी वेव्स. क्योंकि जो अशांत आत्मा है वो लड़ रही है, झगड़ रही है, गुस्सा कर रही है, जो वो अशांत है, अब उसको शांति की जरूरत है. तो मैं शांति उसे कैसे दूं? आई हैव टू बिकम पीसफुल माई सेल्फ एंड रेडिएट दोज वाइब्रेशंस ऑफ पीस. एंड अंत में कॉन्सेंट्रेट ऑन द हायर बीइंग, द पॉइंट ऑफ लाइट, द सुप्रीम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी फ्लोइंग इन टू योर सेल्फ, एंड देन रियलाइज दैट and make it a real practice, even in action. This is what we learn in Raja Yoga. So not only harmonious relations can be created with others, but my own behavioral pattern will change automatically on the basis of. So this is how we explain in Raja Yoga. Okay?